जैसे ही अयांश ने राधे से रुको कहा, राधे के कदम थमे और आरवी के हाथ भी, जो खाना खाते हुए थे, रुक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अयांश की ओर। अयांश ने खाना खाते हुए एक नज़र उठाकर दोनों को देखा और राधे से पूछा, क्या कर रहे हो? वो अयांश, बाबा बेड साफ। राधे बोल ही रहा था कि अयांश बीच में ही आरवी की ओर देखते हुए बोला, अब जिसने गलती की है हरजाना तो वही भुगतेगा ना, कोई ज़रूरत नहीं साफ करने की। जिसने बेड पर पानी फैलाया है वो खुद साफ करे। रहने दीजिए राधे भैया, आपके अयांश बाबा का इशारा हम समझ गए। गिराया किसने ये पता है, गिरा किसी वजह से जैसे ये मालूम ही नहीं। हम साफ कर लेंगे, डोंट वरी, आरवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए राधे से कहा। राधे ने ठीक है कहते हुए सिर हिला दिया। वैसे अगर ना भी साफ करेगी और गीले बेड पर सोएगी भी नहीं तो कमरा बहुत बड़ा है, किसी भी कोने में एडजस्ट कर लेगी, राइट मिसेज मेहरा? अयांश भौंहें चढ़ाते हुए बोला, रॉन्ग मिस्टर मेहरा, मैं आरवी चतुर्वेदी हूँ। एनीवे, मुझे ये कमरा दे रखा है, यहाँ कैद कर रखा है आपने, तो मैं कुछ भी कर लूंगी, किसी भी कोने में रह लूंगी, इट्स माई प्रॉब्लम। आप अपना खाना खाइए ना, मैं तो खा रहा हूँ, तुम भी खा लो, क्या पता कल मिले ना मिले, अयांश खाना खाते हुए बोला। ये सुनकर आरवी ने खाने की प्लेट की ओर देखा और मन ही मन बोली, सॉरी बट ऐसा खाना मिले ना मिले एक बराबर है, कोई स्वाद ही नहीं। आई थिंक मिर्च मसाले तो बस खाने को दिखाते हैं, डाला तो जाता नहीं, है तो बेस्वाद, पर जिंदा रहने और इस डेविल को सहने के लिए खाना तो पड़ेगा, चल आरवी खा ले। इतना कहकर आरवी खाने लगी। तभी राधे ने दोनों से पूछा, और कुछ लेकर आऊं? नहीं, मेरा तो हो गया, और जिनका नहीं हुआ उनको पूछने की जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। जी मैं जाता हूँ, मालिक के कमरे में पानी रखना है, कहकर राधे उसी वक्त वहां से चला गया। आरवी अयांश को घूरते हुए खा रही थी। तभी अयांश सोफे से उठा और आरवी के पास आया। अयांश को अपनी ओर आता देखकर आरवी अपने कदम पीछे लेने लगी, ये सोचते हुए कि अब ये क्या करेगा। अयांश थोड़ा और मुस्कुराते हुए करीब आया, तभी आरवी बेड पर जा बैठी। खाने की प्लेट टेढ़ी होने ही लगी थी कि अयांश ने उसे पकड़ लिया और आरवी के हाथ से लेकर बेड पर साइड में रख दी और फिर खुद आरवी पर झुकने लगा। क्या कर रहे हैं आप? आरवी लड़खड़ाती जुबान से बोली। अयांश उसकी ओर करीब जाने लगा और उसके कंधे पर हल्का सा धक्का देकर उसे पीछे की ओर बेड पर गिरा दिया। ये देख आरवी की आंखें फैल गईं और उसने अपनी हथेलियां अयांश के सीने पर रखकर उसे खुद के करीब आने से रोकते हुए कहा, मिस्टर मेहरा क्या कर रहे हैं आप? अयांश मुस्कुराते हुए बोला, सोच रहा हूँ, शादी तो हो गई मेरी तुमसे, बट अभी सुहागरात बाकी है, सो वो मना लूँ तुम्हारे साथ? ये सुनकर मानो आरवी की जान ही हलक में फंस गई। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरे पर साफ डर की झलक दिखाई देने लगी। तभी अयांश ने अपने सीने पर लगी आरवी की दोनों हथेलियां पकड़ ली, जिसे आरवी सहम गई और हड़बड़ाते हुए बेड से उठने लगी, पर अयांश ने उसे वापस बेड पर लेटा दिया। आरवी चाहकर भी अयांश की मजबूत पकड़ में हिल नहीं पाई। अयांश आरवी के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाने लगा, तभी प्लीज प्लीज बुदबुदाते हुए आरवी ने अपनी आंखें मूंद ली। ये देख आरवी ने पल भर तो आरवी को निहारा और दूसरे ही पल जोर से हंसता हुआ आरवी से ऊपर से हट गया। अयांश की हंसी सुनकर आरवी ने फट से आंखें खोली। अयांश को खुद से दूर पाकर वो राहत महसूस करते हुए बेड पर बैठ गई और अयांश की ओर हैरानी से देखने लगी। तभी अयांश अपनी हंसी रोककर बोला, बड़ा कहती हो तुम मुझसे नहीं डरती, जाकर उठकर आईने में अपना चेहरा देखो, मेरा खौफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब तो मान लो आरवी मेहरा, तुम अयांश मेहरा से डरती हो, स्ट्यूपिड गर्ल, और हाँ मैं तुम्हें मुंह के नहीं लगाने वाला। इतना कहकर अयांश वहां से चला गया। अयांश के जाते ही आरवी ने जमीन पर जोर से पैर पटका, मुंह से फूंक मारी और अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये परेशान करने और खुद को जीत दिलाने का एक मौका ना छोड़ते, यू स्ट्यूपिड मिस्टर मेहरा, अब परेशान होने की बारी मेरी नहीं आपकी है। चार दिन हो गए आपको मेरा जीना हराम करते, बस कल का दिन मैं आपको इतना परेशान और आपका जीना इतना हराम कर दूंगी ना कि आपने जो किया है उस पर आप ही पछताएंगे। बहुत शौक है ना तंग करने का, वेट एंड वॉच। खाने की प्लेट हाथ में उठाकर खाना खाते हुए बेड से उठते हुए अयांश देर रात तक अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। जैसे ही उसने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। वो लैपटॉप बंद करके सोने के लिए बेड पर जाकर लेट गया, पर सोने की कोशिश के बावजूद भी ना सो पाया। नींद आज अयांश के चाहने पर भी उससे दूर रही। वो बेड पर लेटा बार बार करवट बदलता रहा, आखिरकार परेशान होकर बैठ गया। क्या है, सो क्यों नहीं पा रहा, नींद आ ही नहीं रही है, झुंझलाते हुए। इतना बोलकर अयांश उठा, उसने पानी पिया और कमरे से निकलकर घर के बाहर गार्डन एरिया की ओर जाकर टहलने लगा। अयांश इधर उधर खामोशी से टहल रहा था। उसके दिमाग में उस वक्त बस यही चल रहा था कि सक्षम और आरवी को बख्शेगा नहीं, इतना दर्द देगा कि उनकी जिंदगी नासूर बना देगा। सक्षम के साथ वो जो कर रहा था उस जगह रख, मार के साथ हर चीज से वंचित, वो काफी था बदला लेने को और सजा देने को। और आरवी को उम्र भर अपने पास रख, उसे प्यार परिवार से दूर रख, बार बार ठेस पहुंचाना, ये काफी था आरवी को तकलीफ में रखने के लिए। अयांश सक्षम आरवी दोनों को दर्द देकर बेहिसाब तड़पाना चाहता था और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी हो रहा था। अयांश को ऐसा करते हुए सुकून मिल रहा था। उसके होठों पर खुद ब खुद स्माइल आ गई और वो आसमान की ओर देखते हुए खुद से बोला, जितना लोग समझ लेते हैं उतना आसान नहीं अयांश मेहरा से टक्कर लेना, जो कोशिश करता है यकीनन मुंह की खाता है, न मरता है और न जीने लायक बचता है। एटीट्यूड से
उधर सक्षम कुर्सी से बंधा ही पड़ा था। वो नजरें उठाकर बार बार इधर उधर देख रहा था और कैसे छूटे, यहाँ से कैसे निकले ये सोच रहा था। तभी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, इतना भी मुश्किल नहीं अयांश मेहरा, तुमसे टक्कर लेना आसान था बहुत। तभी तो मैंने माना अभी तुम चौकन्ने हो गए, पर शातिर तो नहीं। माना कोई तुम्हारे बारे में नहीं जानता, तुम बताते ही नहीं, पर मैं तो जानता हूँ ना। हाँ, तुम गुस्से वाले हो, बुरे हो, और जब एंग्री मैन बन जाते हो तब सब तहस नहस कर देते हो। गुस्सा खतरनाक है तुम्हारा, पर सक्षम बालिया भी बहुत खतरनाक है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते, और ना ही जाना तुमने मुझे। बाकी होते हैं शिकार तुम्हारे गुस्से के, पर तुम होते तो मेरे शिकार, तभी तो तुम्हारे साथ रहकर तुमसे ही खेल गया। मंद मंद हंसते हुए, कुत्ता वफादार होता है ये तुमने सुना है, पर कुत्ता काटता भी है अयांश मेहरा। मेरी कमजोरी अगर आरवी है जिसे मैं तुम्हारी तो नहीं रहने दूंगा, तुमने छीना है मुझसे वापस हासिल कर लूंगा, और मैं तुम्हारी कमजोरी से भी वाकिफ हूँ अच्छे से। सो वेट एंड वॉच, फिलहाल मेरे हाथ से बाजी तुम्हारे हाथ में आई है, पर बाजी पलटते देर न लगेगी, और सक्षम बालिया ये सब करने में माहिर है। तुम नए हो अभी और मैं पुराना खिलाड़ी, मुझे मात दोगे कब तक? हाँ, कब तक मुझे यहाँ रखोगे? बस एक बार यहाँ से बाहर, फिर मेरी जीत तुम्हारी हार। तुम्हारी नाक के नीचे से ठीक सामने से मैं तुम्हारे पैसे निकाल सकता हूँ, तो आरवी भी निकाल सकता हूँ, और वो तो है ही मेरी। मुस्कुराते हुए अगली सुबह अयांश वॉकिंग करके घर लौटा ही था कि तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ होने का एहसास हुआ। अयांश ने पैर हटाकर नीचे जमीन पर नजर डाली और पास ही गाड़ी धो रहे ड्राइवर से कहा, सुनो। जी साहब, कहते हुए वो फट से पानी की पाइप छोड़कर अयांश की ओर भाग आया। अयांश ने उसे जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यहाँ घास में क्या है। जी साहब, कहते हुए वो फट से नीचे बैठा और वहाँ लगी धूप दूरवा घास में हाथ फेरने लगा। अयांश ने आंखों से चश्मा उतारते हुए कहा, जल्दी।
कर रहा हूँ साहब, कहते हुए वो जोर जोर से घास पर हाथ चलाने लगा। तभी ये है, कहते हुए उसने ऊपर अयांश की ओर देखा। क्या है ये? कुछ काले मोती, और ये है साहब, कहते हुए वो नीचे से उठा और उसने हथेली अयांश के सामने कर दी। मंगलसूत्र? अयांश उसके हाथ से पेंडेंट लेते हुए बोला, हाँ साहब वही है, यहाँ घास में और भी काले मोती बिखरे पड़े हैं, घास की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर बोला। तभी अयांश को समझ आ गया कि ये वही मंगलसूत्र है जिसे उसने आरवी को पहनाया था, और वो तोड़कर फेंक चुकी है। अयांश ने दो दिन से इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर आरवी ने ये हरकत की सोचकर उसकी भौंएं उसी वक्त गुस्से से सिकुड़ गईं, और पेंडेंट को अपनी मुट्ठी में भींचकर मन ही मन बोला, ये तुमने ठीक न किया, मेरा डाला मंगलसूत्र तुमने तोड़ दिया और यूं जमीन पर पैरों तले आने के लिए जमीन पर बिखेर कर रख दिया। अब रेडी हो जाओ मिसेज मेहरा, जो तुम्हें करना था तुम कर चुकी, अब मेरी बारी, फिर से तुम्हारे गले में और रोज मेरे नाम का मंगलसूत्र, वो भी तुम्हारी ही मर्जी से, ना डाला तो मेरा नाम भी अयांश मेहरा नहीं। तभी ड्राइवर बोला, इनका क्या करना है साहब? अयांश उसकी हथेली पर हाथ मार देता है जिससे उसके हाथ में मौजूद काले मोती जमीन पर जा गिरे, और वहां से अंदर की ओर बढ़ते हुए बोला, गार्डन की अभी सफाई करवाओ। पेंडेंट मुट्ठी में ही लिए हुए आरवी नहाकर बाहर आई तो देखा राधे टेबल पर फल और पानी से भरा जग रख रहा था। ये देख आरवी बोली, क्या बात है राधे भैया, आज आप पहले ही खाने पीने का इंतजाम करके रख रहे हैं यहाँ? आपके अयांश बाबा डर गए क्या मेरे बेहोश होने पर, या उनको पूरा भरोसा है फिर मुझे कैद करके चले जाएंगे? राधे आरवी की ओर देखते हुए बोला, तो आप ऐसा करती क्यों है कि उनको बंद करना पड़े? मान लीजिए ना अयांश बाबा की बात, आप सब होना उनकी मानने के लिए, और मैं क्यों मानूं? जरूरी तो नहीं सब उनकी माने, हूं करते हुए आरवी गर्दन झटकाते हुए बोली। तकलीफ आपको ही होती है ना, आप जिद करती हैं तभी वो डांटते हैं चिल्लाते हैं, उनकी मान लेंगी तो परेशानी ना होगी, हम भी मानते हैं ना अयांश बाबा की, राधे टेबल के पास से उठते हुए बोला। आप डरते हैं उनसे, मैं आप जितनी डरपोक नहीं, जो जितना डरते हैं उनसे वो उतना ही डराते हैं। आप ही ना माने उनकी, अगर वो गुस्सा ना करें चिल्लाएं, और आपकी भी मजबूरी है उनकी मानना, कौन सा खुशी खुशी मन से मानते हैं, हम तो मन से ही मानते हैं अपने अयांश बाबा की, आदत हो गई हमें, आप ही मान लीजिए आपको भी आदत हो जाएगी, और कृपा करके ऐसा ना करें कि आपको बेहोश होना पड़े, राधे ने प्यार से बोलते हुए कहा। नहीं होंगे बेहोश, काश जैसे आपको है परवाह उनको भी होती, पर वो और परवाह दूर दूर तक नाता नहीं, हम खा लेंगे पी लेंगे, फिक्र मत कीजिए इसका। ये मतलब नहीं कि हम आपके अयांश बाबा की हर बात के आगे चुप रहेंगे, गलत बर्दाश्त ना होगा तो कहेंगे ही, वैसे ये आप उनके ऑर्डर पर रख रहे हैं ना खाना पीना, मानना पड़ेगा, पूरा यकीन है मिस्टर मेहरा को खुद की हरकतों पर, सोच रहे होंगे इनकी जरूरत पड़ सकती है, फिर दरवाजा बंद कर दूंगा तो, और आप सब तो उनकी हाँ में हाँ ना में ना करने वाले हैं, कहीं डर तो नहीं गए, मैं बार बार बेहोश होकर टपक गई तो मुझे तिल तिल करके मारने का जो उनका इरादा है वो धरा का धराना रह जाए, भौएं चढ़ाते हुए। मेरे इरादों से अभी तुम वाकिफ कहाँ हो? दरवाजे पर खड़े अयांश ने कहा, तो आरवी और राधे दोनों ने अयांश की ओर देखा। नहीं होना वाकिफ मिसेज मेहरा, अयांश ने अंदर आते हुए फिर कहा, और राधे को वहां से जाने का इशारा किया। राधे वहां से चला जाता है, उसके जाते ही आरवी अयांश की ओर हैरानी से देखकर पूछती है, अब क्या करने का इरादा है आपका? तभी अयांश ने टेबल से सेब और चाकू उठाया और सेब काटते हुए बोला, तुम्हें तबाह क्रमशः।